वो नीचे आकर के गिर गए। मकराक्ष को बड़ा क्रोध आया, एक तरफ दशरथ का बेटा, एक तरफ खर का बेटा, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही के पास बाण है। जैसे कोई आकाश में एक दिशा से आने वाला बादल और दूसरी दिशा से आने वाला बादल, यूं बादल आकर के यूं भिड़ते हैं, तो भिड़ने से भाई वहां पर बिजली गड़क बहुत जोर से शब्द पैदा होता है, ऐसे ही इन दोनों की यूं भिड़ने से मकराक्ष और राम के लड़ने से वहां पर बड़ा शब्द हुआ। देवता, दानव, गंधर्व, ये सब के सब अंतरिक्ष के अंदर ये युद्ध देखने के लिए अपना काम छोड़ छोड़ करके आए। दोनों में दुगुना उत्साह आया, कृत प्रतिकृता न्यून्यम, एक ने एक से बढ़कर अपना काम दिखाने के लिए प्रतिकार करने का विचार किया। राम जी बाण छोड़े तो राक्षस काट दे, और राक्षस बाण छोड़े तो राम जी काट दे, ऐसे बाणों के द्वारा सब दिशाएं भर गईं और पृथ्वी के ऊपर बाण ही बाण हो गए। और उसके बाद राम जी महाराज ने एक बड़ा सा बाण लिया, बाण लेकर के 8 बाणों के द्वारा उसके सूत को मार दिया। सूत को मार डालने के बाद भगवान ने फिर अपने बाणों से उसके रथ को भेदन करके घोड़ों को मार दिया। अब वो मकराक्ष रथ से रहित हो गया, रथ ही नौकर अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के आया, बड़ा भारी वो त्रिशूल था। देखो कल जो कुंभकर्ण के पास त्रिशूल था ना, शूल, वो शूल था 32,000 शेर का, उतना तो बड़ा नहीं था, पर इसके पास भी बहुत बड़ा त्रिशूल था वो लेकर के। और वो राम जी की तरफ जब दौड़ने आया तो देवता और जो है गंधर्व वगैरह आकाश में सब भय के मारे कांपने लग गए, सब ने वो मुंह फेर लिया, युद्ध उधर हो रहा है, मुंह फेर लिया कि आंखों से देखा न जाए। और वो दौड़े दौड़े आया तो राम जी महाराज ने निशाना लगा करके त्रिशूल का एक बाण से कई बाण निकले थे, यूं त्रिशूल के टुकड़े कर दिए। जब वो त्रिशूल के टुकड़े कर दिए तब देवताओं को कहा, रे मुंह फेर लो, मुंह फेर लो, त्रिशूल को काट दिया। तो साधु साधु, अरे बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, ऐसे आकाश में बोलने लगे। अब मकराक्ष अपने हाथ यूं मुक्का बांध करके राम जी की तरफ आया और आके कहने लगा, तिष्ठ तिष्ठ, ठहर ठहर, अब मैं तुमको मारता हूं। राम जी महाराज ने देखा कि ये मुझे क्या मारेगा और मैं इसका क्यों स्पर्श करूं, भाई ऐसे आदमी का तो छूना ही पाप लगता है। तो भगवान ने देखा कि मरने के बाद तो सभी आग लगाते हैं, मैं इसके शरीर में जीते जी आग लगा दूं। तो पावकास्त्र लिया, माने अग्नि वाला अस्त्र लिया, अस्त्र लेकर के राम जी ने कान तक खींच करके उसको फेंका, वो जलता हुआ आग जाकर के मकराक्ष को जला के पूरा कर दिया। जब मकराक्ष मर गया तब रावण के पास में ये सारे के सारे योद्धा युद्ध भूमि छोड़ करके भग गए कि बचाओ बचाओ महाराज बचाओ। क्या कि महाराज एक ऐसा बाण है राम के पास, वो आग ही लाके के सीधा बरसाता है। दशरथ नृपसून बाण वे गई, रजनी चरम निहतम खरात्मजम तम, प्रदद त्रिशूरथ देवता प्रहिष्टा, गिरिमिव वज्रहतम यथा विकीर्णम। गिरिमिव वज्रहतम, जैसे कोई वज्र के द्वारा पर्वत तोड़ दिया जाए, उस प्रकार से राम जी महाराज ने खरपुत्र मकराक्ष को पटक दिया, उसका नाश कर दिया। मकराक्ष की मौत सुनकर के रावण दंतान कट कटाई है, दांत नहीं, डांट कटाने लगा, वो कर नहीं सकता, जब दांत कट कटाता है, दांत कट कटाने लगा, चिल्लाने लगा जोर जोर से, ये क्या हो रहा है, कोई भी तो नहीं है, बड़ा भारी ये अनर्थ हो गया है, हमारी लंका के एक से एक बड़े योद्धा वो मर रहे हैं और ये हमारे योद्धा कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। आया इंद्रजीत मेघनाथ, अब भाई मेघनाथ के साथ युद्ध होगा, हो बड़ा प्रबल युद्ध। सारे रामचरितमानस में या क्या रामायण में या और कहीं सब जगह एक ही बात लिखी है कि इसके समान कोई योद्धा नहीं था, बड़ा भयंकर ये युद्ध था। इंद्रजीत अब एक इंद्रजीत बचा था। रावण ने कहा कि बेटा क्या करोगे, लंका का राज्य करोगे या युद्ध करोगे? लंका का राज्य करना हो तो मैं पहले जाकर युद्ध करूं, मैं उनको मार दूं, और या वो मेरे को मार दे, तुम लंका का राज्य करना। महाराज, लंका का राज्य तो आपके मरने के बाद विभीषण को राम जी ने दे दिया। कि राम जी कौन होता है मेरे राज्य को देने वाला? मेरा राज्य देने से नहीं मिलता है, मेरा राज्य तो लेने से मिलता है। और देखो, तुम यहाँ के राजा हो जाओ और मैं युद्ध करता हूँ। इंद्रजीत ने कहा कि महाराज ही क्या होता है, ऐसे कैसे संभव है, मैं आपका एक सैनिक हूँ। तो अच्छी बात है भाई, फिर जाओ राम और लक्ष्मण के सामने जाओ। देखो, लड़ाई करो तो अदृश्य होकर के लड़ाई करना, और दृश्य हो तो फिर अपना पूरी सुरक्षा कर लेना। तुम्हारे जैसा कोई योद्धा न हमारे यहाँ है न शत्रु सेना में है, जाओ तुम युद्ध में विजयी होगे। और तुमको इंद्र आदि कोई नहीं मार सकता, तो ये दो मनुष्य तुम्हारा कर भी क्या सकेंगे। ठीक है महाराज, अभी जाता हूं। मेघनाथ ने पिताजी को प्रणाम किया और अपने निवास स्थान पर जहां यज्ञशाला थी, यज्ञशाला यज्ञ भूमि, उस यज्ञ भूमि में चला गया। यज्ञ भूमि में जाकर के विधिवत उसने अग्नि को प्रकट किया, प्रकट करके और भाई वहां पर यज्ञ करना चालू किया। लाल लाल कपड़ा पहनने वाली अनेक स्त्रियां आई। महाराज कुमार, हम आपके यज्ञ की सहायता में, सेवा में तैयार हैं। हे महाराज कुमार, आज्ञा दीजिए। वे सब तरह तरह की वस्तु लाला करके दे रही हैं, और वो रावण पुत्र मेघनाथ वही यज्ञ कर रहा है। अपने शस्त्रों को ही वहां पर पत्तल वगैरह बना करके और उन पर सामान रख रहा है। बहेड़े को वहां पर संविधाएं बनाई गई हैं, और लाल कपड़े उसने पहने हैं, और अपना जो श्रुवा है जिसमें से वो घी का पदार्थ अपन डालते हैं यज्ञ भूमि में, यज्ञ में, तो कहते हैं वो लोहे का बना हुआ है। चारों तरफ वहां पर अग्नि प्रज्वलित हो गई है, और उस समय में उसी प्रकार से वो यज्ञ को, वो अग्नि को देख रहा है, और उस अग्नि में से विजय के चिन्ह प्रकट हो गए हैं। विजय के चिन्ह प्रकट होने के बाद, अग्नि को परिक्रमा करने के बाद, फिर उसने जो है अग्नि को तृप्त किया, और अग्नि को तृप्त करने के बाद फिर उसने अंतर्धान होने का जो है वरदान लिया। ये तो था ही, यज्ञ करते उसको अंतर्धान होने की कला मिल गई। और उसके बाद वह अपने रथ पर बैठ करके युद्ध भूमि के लिए रवाना हुआ। उसके पास में तरह तरह के बाण थे, मृगेश चंद्रार्ध चंद्रेश्च, और वह रथ था वो सोने के पात के द्वारा बहुत बढ़िया घड़क बनाया हुआ था, और इंद्र ध्वज के समान उसके ऊपर ध्वजा थी, और सूर्य के समान उसके पास ब्रह्मास्त्र था। अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित होकर के ये मेघनाथ जी अपने स्थान से रवाना हुए और अंतर्धान होकर के, और वो राक्षसों से बोलने लगे। राक्षसों, डरने की जरूरत नहीं है, आज राम और लक्ष्मण मेरे द्वारा मारे जाएंगे। देखो राक्षसों, क्या मैं बोलता बात तुमको दिखता हूँ? इसी प्रकार से मैं राम और लक्ष्मण को भी नहीं दिखूंगा, अदृश्य होकर के आज राम और लक्ष्मण को बाणों से बीन दूंगा, मार दूंगा। ये झूठे ही यहाँ साधु का सा वेश बनाए हुए फिरते हैं, तपस्वियों का वेश बनाकर ये युद्ध करने का काम कहाँ से सीख के आए? क्योंकि तपस्वी होता है वो युद्ध नहीं करता, और युद्ध करता है वो तपस्वी नहीं होता है। आज बांदरों से रहित ये लंका हो जाएगी, और राम और लक्ष्मण का नामो निशान मिट जाएगा। तुम प्रसन्न हो जाओ, राक्षसों प्रसन्न हो जाओ। ऐसा कहकर के आकाश में अंतरित हो गया। न रथ दिखे, न घोड़ा दिखे, न शस्त्र दिखे, न वो खुद दिखे। राक्षस सेना बड़ी प्रसन्न हो गई। अब राक्षस सेना ऐसे चलने लगी जैसे हम तो अब विजय हमारे हाथ में आएगी। अब वो इंद्र का शत्रु मेघनाद बहुत विलक्षण अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के राम और लक्ष्मण की तरफ गया और वहां राम लक्ष्मण की तरफ जाकर इमाउत हो, ये है वो दोनों जिनको आज मार करके मुझे संसार में बहुत बड़ी विजय प्राप्त करनी है। राम लक्ष्मण के सामने चला गया और राम लक्ष्मण के सामने जाकर वो वहां बाणों की धारा के वर्षा करने लगा, जैसे कोई मेघ है वो धारा की वर्षा करते हैं। धनुषी ससरे कृत्वा दिव्यम अस्त्रम प्रचक्रतु, उसके पास भाई बाण भी बड़ा दिव्य था और अस्त्र भी बड़े दिव्य थे। राम और लक्ष्मण पर टूट पड़ा और बाण के ऊपर बाण, बाण के ऊपर बाण, बाण के ऊपर बाण बरसाए। राम जी महाराज अपने हाथ में धनुष ले उससे पहले कितनी बाण आकर के और उनके सामने रुक जाते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों ही बाणों से घिर गए। अब जो है वो सोचते हैं कि अब किधर बाण लगाए, न तो कोई धनुष की टंकार सुनती है, न कोई घोड़े की आवाज हिनी नाने की आवाज आती है, न कोई रथ के चलने की आवाज आती है और न कोई वो रूप हमारे सामने आता है, घनांधकार हो रहा है। इस प्रकार से महाबाहुर नाराज सर्वृष्टि भी, उस समय में भाई बहुत विलक्षण बाणों की वर्षा हो रही है। राम जी महाराज उस समय में इतने बाण उनके ऊपर मारे गए लेकिन व्यथित नहीं हुए, शरीर में जगह जगह बाण लगे लेकिन मन में कोई व्यथा नहीं हुई। न राम जी महाराज के जो बाण लगे वो नाराज बाण लगे थे और वो दोनों पर्वतों के समान धैर्य धारण किए हुए वहां पर खड़े रहे और फिर उन्होंने भी अपने बाण रावण के बाण की तरफ फेंके, पर कैसे फेंके भाई कि जिधर से बाण आते थे उस दिशा में फेंकते थे, यही उनके पास जानने का चिन्ह था। अब वो कभी बाण फेंके, कभी भाला फेंके, कभी क्या फेंके, इस प्रकार से राम जी महाराज के ऊपर अनेक प्रकार के शस्त्र फेंके। तब जो है रावणिस्तु दिशा सर्वा रथेन अति रथो पतत, तो फिर उसके बाद राम जी महाराज के ऊपर बाण लगने पर राम जी महाराज थोड़े घायल हुए और घायल होने के बाद में राम जी महाराज ने देखा कि अब कैसे इसके साथ में युद्ध करें, कोई उपाय हमको दिख नहीं रहा है। नचास्य विदितम किंचित, इसका कुछ भी तो पता नहीं चलता है। राम जी लक्ष्मण जी ने कहा, हे राम, ये तो हम सबको मार देगा, बांद्री सेना नष्ट हो जाएगी। महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूँ, इस ब्रह्मास्त्र के छोड़ने के बाद तो कोई नहीं बचेगा, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, एक मेघनाद के पीछे कितने योद्धा मारे जाएंगे, थोड़ा सोचो। योद्धा होता है वो आगे पीछे का सब विचार करता है, अपने शस्त्र के विषय में सोचता है कि इसके प्रयोग से इसका प्रभाव कहां तक पड़ेगा। देखो, जो युद्ध नहीं करता हो, जो शरणागति चाहता हो, जो भग गया होता हो, जो मदोन्मत्त होता हो, उसको कोई मारता नहीं है, इसलिए और ही कोई यत्न करेंगे कि जिससे ये मारा जाए। परंतु एक बात को याद रखो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग यत्र तत्र सर्वत्र नहीं किया जाता, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बहुत सोच समझ के किया जाता है। राक्षसम निहनिष्यन्ति दृष्ट्वा बानर यूथपाः, और देखो अभी तो ये अंतरित हुआ हुआ है और अंतरित होने के बाद जब इसका अपना समय आएगा प्रकट होने का, तब अपने युद्ध करेंगे। यद्येष भूमिम विशते दिवं वा, चिंता मत करो, इसके पास में अभी शक्ति आई हुई है, यदि वो भूमि में भी प्रवेश करे, आकाश में भी चला जाए, रसातल में भी चला जाए, चाहे ये कहीं पर भी चला जाए, ये मेरे बाण से बच नहीं सकता है, परंतु अभी इसके पास थोड़ी देर के लिए रक्षा करने में माया आई हुई है, इसलिए माया के कारण से बलवान हुआ हुआ है। इस प्रकार से भगवान ने कहकर ब्रह्मास्त्र को रुका दिया और बांदरों को उत्साहित होकर के लड़ने के लिए कहा। इधर भाई मेघनाद लड़ते 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 देखने लगा कि अब मेरे पर माया का प्रभाव कम हो रहा है। देखो, कोई आदमी जैसे नशे की गोली लेता है, नशे की गोली लेता है, दो तीन घंटे नशा रहता है, फिर उसका नशा उतरता है, जैसे नशा की दवाई सुंघाते हैं और ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर लोग, ऑपरेशन उस समय में कर लेते हैं कि भाई अब थोड़ी देर में इसको होश आ जाएगा, पहले ऑपरेशन कर करा के सब ठीक कर देते हैं। अब उसको होश आता है, होश आता है तब भाई ओहो अच्छा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ। इसी प्रकार से सैव निवृत्ति आहुआत तस्मात प्रविवेश, उसके ऊपर वो यज्ञ की जो माया आई, उस माया से उसको जो कुछ प्रभाव मिला वो प्रभाव कम होने लगा, वो लंका में चला गया। लंका में जाकर वो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना है। तो लंका में जाकर वो वापिस आया, वापिस आया तो उसने एक माया फैलाई। वापिस आकर के पश्चिम द्वार की तरफ आया जहाँ राम और लक्ष्मण खड़े रहते थे, हनुमान जी भी रहते थे। मेघनाथ उस समय बड़ी माया दिखाया, ध्यान से सुनना। उस माया में उसने बताया उसके रथ के अंदर सीता बैठी हुई है, माया की वैसी सीता बनाई हुई है, सीता बैठी है। मेघनाथ उसमें हाथ में गदा लिए हुए है, माया में ही सीता वहां पर बैठी है और सब बंदरों को मोहित करता हुआ, सबके आंखों में धूल डालता हुआ। आंखों में धूल डालने का अर्थ यू मुट्ठी भर के आंख में धूल डालना ये नहीं, सबको जो है मोहित करता हुआ, सबको आश्चर्य में डालता हुआ, सबको भयभीत करता हुआ वो अपने साथ में रथ में जब सीता को लेकर आया और बंदरों को कहने लगा, ए बंदरों इस सीता के लिए तुम आए हो, सीता मेरे रथ में बैठी है, अब इस सीता को हम अपने तलवार से और गदा से यहाँ तुम्हारे सामने मारते हैं, तुम्हारे में कौन राम है, कौन लक्ष्मण है, कौन हनुमान है, कौन सुग्रीव है, कौन बंदर बलवान है, आओ इसको बचाओ, देखे किसी में ताकत है, कोई माई का लाल हो तो आओ मैं इसको मारता हूँ, जोर से ललकारने लगा। हनुमान जी महाराज ने सुना, दूसरे बांदरों के जो है खून जो है गर्म हो गया, हाथ में सब पत्थर वगैरह लेकर के आए और यूं मारने लगे। हनुमान जी ने कहा मारोगे तो सीता के लग जाएगी। हनुमान जी बेचारे ऐसे हो गए, अब करे मारे तो सीता के लगे और न मारे तो ये सीता को मारे, अब बंदर करे तो क्या करे। हनुमान पुरतस्ते शाम, हनुमान जी महाराज भी वहां गए। हनुमान जी महाराज ने उस सीता को देखा, वो की वो सीता है, वही उसका मुंह उतरा हुआ है, वैसे ही कपड़े हैं, वैसे ही इसका जो है शोक है, वही एक चोटी है, वही उपवास से कृश हुई हुई है। अब हनुमान जी को क्या पता कि ये कोई जो है माया फैलाया हुआ, क्या करे बेचारे। हनुमान जी थे वो तो एकदम जो है देख करके आश्चर्य में डूब गए, ठीक यही सीता है। बंदरों ने पूछा, हनुमान जी ये वही सीता है जो आपने देखी है? हाँ भाई वही सीता है, उस सीता को ये लेके आया है। अशोक वाटिका से कैसे ले आया, ये कैसे ले आया पता नहीं, है ये यही राघव प्रिया है। ताम निरीक्ष मुहूर्तम तु मैथिलीम अध्यवस्य च, ठीक ये सीता ही, ऐसा उनको ज्ञान हो गया। और ज्ञान होने के बाद उनके मन में बार बार आया कि अब क्या करें, कैसे इस सीता को बचाएं। राक्षसेंद्र सुत श्रिताम, अब क्या करें, यदि मैं जो है यहाँ लपक करके इसके रथ पर जाता हूँ तो ये तब तक तो मार देगा, और नहीं जाता हूँ तो ये सीता तो अब मरने वाली है। किम समर्थितम अस्य, अब क्या करें, अब कैसे, अब क्या होगा। हनुमान जी महाराज इतने जो है बुद्धिमान, उनकी बुद्धि कुछ काम नहीं आई। और वो भाई रावण का बेटा जो है राम जी की तरफ अपने रथ को बढ़ा रहा है। हनुमान जी महाराज उनके बड़ा क्रोध आया, क्रोध के कारण से कृत्वा विक्रोशम निस्त्रंसम, और क्रोध के मारे वे भी सामने आए। तब जो है मेघनाद ने क्रोध से मूर्छित होकर अपनी तलवार निकाली, तलवार निकाल करके सीता की चोटी पकड़ी, मायामयी सीता की हो नहीं तो उसका तो कौन क्या कर सके, वो मायामयी सीता उसकी चोटी पकड़ी, चोटी पकड़ करके सबके सामने तलवार से उसको काटा, तलवार से काटी, राम 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 बचाओ राम बचाओ राम, कितने दिनों के बाद आए हो बचाओ राम, ऐसे चिल्लाने लगी जोर जोर से। जब इस प्रकार हनुमान जी को इतना क्रोध आया, हनुमान जी महाराज एकदम क्रोध मारे उछल करके उसके पास आए, कहने नाश दुरात्मन ना लायक, तूने माँ के केश पकड़ लिए, तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, क्या राक्षसों के साथ में बैठ करके राक्षस जैसा काम करने लगे? धिक्कार तेरे को, तू पापी है, तेरे पाप के भार से पृथ्वी समुद्र के अंदर क्यों नहीं धंस जाती है? अनार्य दुष्ट पाप पराक्रमी, ऐसा ही तेरा बाप निकला, ऐसा ही तू निकला। तुम्हारे में यदि बल था तो तुम राम जी के हाथ से क्यों नहीं लेके आए? ऐसा तुमने सीता ने क्या अपराध किया था? लड़ाई थी तो तुम्हारी राम से थी, हम से थी, सीता ने तुम्हारा क्या किया? अब तुम सीता को मार के कौन से सुखी रह जाओगे? यहाँ संसार में जो स्त्री का आघात करता है वो सारे लोगों के द्वारा मरा हुआ माना जाता है। तू आज सारे संसार में मर गया है, लोग तेरे मुंह के ऊपर थूकेंगे, तूने बहुत अन्याय किया। ऐसे हनुमान जी महाराज बिगड़ गए और बिगड़ करके हनुमान जी महाराज उसके रथ के ऊपर कूद गए। एक साथ कई बानर भी टूट पड़े और रथ को तोड़ करके इधर उधर 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 वो फेंकने लगे। हनुमान जी महाराज उस समय में बड़े क्रुद्ध हुए। तब भाई हनुमंतम हरि श्रेष्ठम इंद्रजीत बोलने लगा, हनुमान जी को और सुग्रीवादी को सबको, हा हो यही हो ना तुम जो है सीता की खोज के लिए यहाँ आए थे? यही तुम्हारा बल था कि तुम राम और लक्ष्मण के बहकावे में आकर इतनी बड़ी सेना का नाश करने के लिए आप यहाँ आए थे? तुम बोलते हो कि स्त्री को मारना नहीं चाहिए, परंतु सीता जैसी स्त्री जो हम लोगों के इतनों का खून पी गई, उसको जिंदा रखेंगे तो न जाने कितनों का और खून पिएगी, इसका तो मारना ही अच्छा है। इस प्रकार से भाई जो है इसको मारा था और मारा। तब भाई कहने लगा, हनुमान को कहने लगा जोर से, देख ये सीता मैंने मार के पूरी कर दी है, निकल जाओ तुम लंका से, किस लिए आए थे? सीता के लिए, सीता मारी गई है, या तो तुम चले जाओ नहीं तो अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। इस प्रकार से सीता के लिए किया गया तुम्हारा प्रयास निष्फल हो गया है, राक्षसों आनंद मनाओ और इन बंदरों को आप पीट पीट के यहाँ से भगा दो। बंदरों का प्राण तो सीता है और रावण के प्राण भी सीता में थे, सीता के मार देने के बाद अब सारे बानर मर गए हैं। इस प्रकार से जोर जोर से चिल्ला करके वो लंका के अंदर चला गया। हनुमान जी और सब लंबी लंबी सांस लेकर के और बैठे बैठे हाथ पैर बड़े लंबी सांस ले रोने लगे जोर जोर से। अब मैंने सीता जी को बहुत कहा था आप मेरे साथ चलो, सीता जी मानी नहीं। यहाँ आने के बाद भी राम जी महाराज ने मुझे आदेश नहीं दिया अशोक वाटिका से सीता को ले आता, सीता को ला करके और मैं सीधा किष्किंधा में पहुंचा देता या अयोध्या पहुंचा के आ जाता। जो हनुमान मैं इतने दूर से पर्वत लेके आया वो हनुमान सीता को सीधा अयोध्या पहुंचा कर वापिस आ जाता, राम जी यहाँ लड़ते रहते, आज सीता की दशा नहीं होती। कस्माद विशिन्न वदना विद्रम प्लवंगमा। इस प्रकार से भाई सब बड़े दुखी हो गए। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि अब क्या करें, अब हम किसके लिए लड़ाई करें, क्यों लड़ाई करें, क्यों युद्ध करें, हमारा युद्ध का लक्ष्य तो खत्म हो गया। हनुमान जी महाराज ने उन सब दीनहीन बांदरों को संभालते हुए कहा कि पृष्ठ तो अनुब्रजत भम्माम अग्रतो यान्तम आहवे, चलो चलो अब राम जी के पास चलते हैं। अब युद्ध करने का कोई लाभ तो दिखता नहीं है, परंतु अंतिम निर्णय हम थोड़ी ले सकते हैं, हम तो राम जी के अधीन है, राम जी जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। हनुमान जी महाराज कई बंदरों के साथ रोते बिलखते बड़ी मुश्किल से राम जी के पास आए। राम जी के पास आए तो सब रोने लगे। राम जी ने पूछा, हनुमान तुम्हारे आंख में आंसू, तुम क्यों रोते हो? हनुमान तुम रोते हो इसका मतलब सारी सेना रोने लग गई, क्या बात है हनुमान? अब जो राम जी प्रेम से पूछे त्यो हनुमान जी फबक 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 करके रोने लगे। उस समय में बड़ी मुश्किल से राम जी ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात हो गई। वो आया और उसने आकर के और जो है सीता को मार दिया। राम जी महाराज के मन में बड़ी चिंता हुई। हनुमान रावणी रथे महतिम पातयत छिलाम, इधर तो ये सब शोक में डूबे हुए थे, इधर इधर भाई मेघनाथ फिर दोबारा आया। दोबारा आकर के देखने लगा कि अब अपने एक बार तो शोक संदेश दे गए, देखें क्या करते, तो सब शोक में डूबे हुए। अकस्मात जब मेघनाथ आया, हनुमान जी से रहा नहीं गया, हनुमान जी एकदम आकाश में उछले तो क्या हो, तो बस वही जो है अपने अदृश्य हो गया। हनुमान जी ने शिला फेंकी, शिला फेंकने का कोई अर्थ नहीं रहा, वो शिला राक्षसों के ऊपर जाकर के गिर गई। और फिर वो पर्वत भी ले लिए, शिखर भाग ले लिए। बंदरों ने बहुत कुछ किया, लेकिन बंदरों के करने से होगा क्या, बंदरों ने इतना सब कुछ किया लेकिन वो तो अदृश्य होकर के लड़ता रहा और बंदरों की सेना घायल होती गई। हनुमान कदनम चक्रे, हनुमान जी ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। और फिर हनुमान जी ने कहा कि चलो चलो भाई, अब इसके साथ युद्ध करने से तो क्या होगा, अपने तो अब राम जी के पास चलते हैं, मतलब वापिस राम जी के पास चलते हैं, सुग्रीव जी के पास चलते हैं, देखें वो हमको क्या बोलते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज जो है राम जी के पास तो थे ही, और अब जो है दोबारा आए, और अब दोबारा आकर के और बैठ गए विचार करने लगे। मेघनाथ बड़ा चालाक राक्षस था, वो मेघनाथ देखा कि अब ये सब शोक में डूबे हुए हैं, ये तो सीता के लिए शोक करेंगे, अपने चलो निकुंभिला में, वहां जाओ और जल्दी से जल्दी वहां हम लोग यज्ञ करके और बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर ले। वो निकुंभिला क्षेत्र में गया, उसने जाकर अग्नि प्रज्वलित कर दी, और अग्नि प्रज्वलित करके उस राक्षस ने वहां पर आहुति देने का काम चालू कर दिया, अग्नि देवता को तृप्त करने लगा। और संध्यागत इवादित्य सुतीव्रो अग्नि समुत्थित है, और भाई वो उस समय में लाल वस्त्र वगैरह पहना हुआ था और होम के अंदर वो खून की अग्नि दे रहा था, उस समय वो बड़ा तीव्र मालूम दे रहा था। उसने बड़ा भारी वहां पर यज्ञ प्रारंभ किया, राक्षस लोग बड़े लोग उसके सब रक्षा में लगे हुए थे, यह यज्ञ उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इधर महाराज जामवंत ने आकर के भगवान श्री राम से कहा कि महाराज आज हनुमान ने कोई कम पराक्रम नहीं किया है, परंतु की क्या बात है, परंतु क्या बताएं, मेघनाद ने आज सीता को मार दिया है। मेघनाथ के द्वारा सीता की मृत्यु की बात सुनकर के राम जी महाराज क्रोध से मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर गए। उस समय में राम जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे कोई कमल नाल हो और उसमें से वो पड़ जाए जमीन पर, तो कमल तो है ऊपर, नाल है नीचे, ऐसे मुख तो है कमल जैसा, शरीर है नाल जैसा, वो पड़ गया। लक्ष्मण जी ने राम जी को संभालते हुए कहा, हे आरा, लक्ष्मण जी के मन में तो बड़ी पीड़ा थी, राम जी को उत्साहित करते हुए कहे, हे राम, आज आपका जितना भी धर्म पाला गया है ये धर्म किसी काम नहीं आया, सारे अनर्थों को देने का काम आपके धर्म पालन ने किया है। अनर्थेभ्यो न शक्नोति त्रातुम धर्मो निरर्थक है, जो धर्म अनर्थों से पिंड न छुड़ाए वो धर्म का पालन क्या काम आया। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उन प्राणियों के ऊपर धर्म पालन करते करते भी आपत्ति आती है तो ऐसे धर्म का कोई अर्थ नहीं रहता है। स्थावर जंगम प्राणी इतना अनर्थ भोगते हैं, उतना तो आपने जितना अनर्थ भोगा है, कष्ट भोगा, उतना किसी ने नहीं भोगा है। पदविदो न विपद्यते, यदि धर्म में कोई शक्ति होती तो आप जैसा धर्मात्मा पुरुष कभी दुख नहीं पाता। यदि अधर्म के द्वारा किसी को नरक मिलना होता है तो अधर्म के द्वारा रावण को कभी नरक मिल जाना चाहिए था। रावण ने अपने जीवन में कौन सा धर्म किया है और आपने अपने जीवन में कौन सा अधर्म किया है, पर रावण तो आराम से सुख भोगता है और आप यहाँ रणभूमि के अंदर दुख भोग रहे हो। आप धर्म की बात बोलते हो पर आपको खुद को ही किस समय कौन सा धर्म करना चाहिए इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा है। आप कहते हो कि पिताजी ने अपने रानी को केकई को वरदान दे दिए थे उनका पालन करना धर्म है। हे राम, पिताजी ने केकई को वरदान दिया था तो वरदान से पहले वो सभा के अंदर आपको राज्य देने का भी तो सबको वरदान दे के आए थे। आपके युवराज पद की घोषणा सभा में की थी, इतने आदमियों के बीच में घोषणा की थी, वो घोषणा बड़ी है या केकई को दिया हुआ वरदान बड़ा था? आप यदि पिता की बात की रक्षा करने के लिए आए तो पिता की बात के लिए तो आपको अयोध्या का राज्य लेना था। न तो आप अयोध्या का राज्य लिए और न आपने अपने पिता को सत्यवादी बनाया, क्योंकि पिता को तो एक तरफ झूठा होना ही था। यदि केकई के सामने सच्चे हो गए तो असंख्य राजाओं के सामने वे झूठे पड़ गए। एक केकई के सामने सच्चा होने से क्या होता है? ओहो, ये भी कोई धर्म का पालन होता है कि जिसके अंदर इतना बड़ा संकट हो, धर्म का फल यही होता है। यदि यही धर्म का फल होगा तो फिर आपका धर्म सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। त्वया यदि दृशम प्राप्तम तस्मा तन्नोपपद्यते, आप जैसे धर्मात्मा पुरुष संकट को प्राप्त होंगे तो ये धर्म तो फिर कोई ताकत